गतिकी वस्तुओं का गिरना। गैलीलियो इस बात से संतुष्ट नहीं था कि उसने कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रेक्षण के द्वारा सत्य सिद्ध कर दिया है, वह तर्क द्वारा भी इस प्रणाली का अस्तित्व सिद्ध करना चाहता था। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक था कि पृथ्वी जब घूमती है तब हवा का भारी झोंका विरोधी दिशा से क्यों नहीं आता, अथवा ऊपर हवा में उठी हुई वस्तुएं पीछे क्यों नहीं रह जाती। 16वीं शताब्दी में टार्टाग्लिया वेनेदिती उठी हुई वस्तुएं पीछे क्यों नहीं रह जाती। 16वीं शताब्दी में टार्टाग्लिया वेनेदिती आदि ने इस प्रक्रिया के जो कारण बताए थे उनकी गणित द्वारा पुष्टि नहीं हुई थी। गैलीलियो ने वस्तुओं की गति की गणितीय व्याख्या की। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यह व्याख्या उसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद डायलॉगस ऑन टू न्यू साइंसेज नामक प्रकाशन में विस्तृत रूप में प्रकाशित हुई। यद्यपि उसके पूर्व प्रकाशन डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड में भी उनका उल्लेख था, जिसको लेकर उसका चर्च से झगड़ा शुरू हुआ, गैलीलियो ने प्रयोग की पद्धति के द्वारा सभी मान्य विचारों को चुनौती दी। उसने प्रयोग के लिए पीसा की मीनार से भारी वस्तुएं नीचे फेंकी या नहीं इस संबंध में शंका हो सकती है, परंतु वस्तुओं के गिरने का सही मापन करने के लिए उसने लोलक और नत समतल का प्रयोग अवश्य किया। यही प्रयोग किसी हद तक आधुनिक विज्ञान के आरंभिक प्रयोग थे। गैलीलियो ने यह प्रयोग स्वयं को आश्वस्त करने के लिए नहीं, वरन दूसरों को आश्वस्त करने के लिए किए, क्योंकि उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि वह प्रकृति का तार्किक निर्वचन कर सकता है। इस दृष्टि से उसके प्रयोगों को प्रयोग न कहकर प्रदर्शन कहना उचित होगा। जो भी हो, उसने वास्तव में ये प्रयोग किए। जब इन प्रयोगों से असंभावित परिणाम प्राप्त हुए, तब उसने उन्हें अस्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वयं अपनी परिकल्पना पर शंका भी की। इस प्रकार उसने तथ्यों के सामने झुककर उस भावना का परिचय दिया जो प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्र में आवश्यक है। यथार्थ प्रयोगों के साथ साथ गणितीय विश्लेषण का प्रयोग करके उसने वस्तुओं के गिरने से संबंधित समस्या का हल खोज निकाला। इस पद्धति से उसने सिद्ध कर दिया कि वायु की अनुपस्थिति में वस्तुएं गिरने के समय परवैलिक पथ का अनुसरण करती हैं। ऐसा करके उसने आधुनिक भौतिकी की पद्धतियों का प्रथम सुस्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसी पद्धतियों का आगे की शताब्दियों में असाधारण सफलता के साथ विकास हुआ। वस्तुतः उसने ऐसी पद्धति की शुरुआत की जो अब से कुछ काल पूर्व आधारभूत वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रचलित हुई।